हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज की भागवत कक्षा में। और ये छठा स्कंद 19वां अध्याय वर्ष नंबर 10 से लेके 13 तक, तो ये 13वां श्लोक बोर्ड पे लिखा हुआ है तो इसका उच्चारण करेंगे। मैं केवल जो बाकी 10 से लेके 12 तक का है उसका केवल अनुवाद पढ़ूंगा, तो आप लोग मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। गुणा व्यतिरियम देवी व्यंज को गुण भोग भवान, तुम ही सर्व शरीर आत्मा, श्री शरीर इंद्रियाशया नाम रूपे भगवती प्रत्ययस्तवमपाश्रयः। गुणा व्यतिरियम देवी व्यंजको गुण भोग भवान, त्वं हि सर्व शरीर आत्मा, श्री शरीर इंद्रियाशया नाम रूपे भगवती प्रत्ययस्तवमपाश्रयः। गुणा व्यतिरियम देवी व्यंजको गुण भोग भवान, त्वं हि सर्व शरीर आत्मा, श्री शरीर इंद्रियाशया नाम रूपे भगवती प्रत्ययस्तवमपाश्रयः। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य ऐसी व्यक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की शब्दार्थ मेरे पीछे दोहराइए। गुण व्यक्ति ही गुणों की खान, इयम यह देवी देवी व्यंजक प्रकाशक प्रकट करने वाला, गुणभृक् गुणों के भोक्ता, भवान आप, त्वं तुम ही निसंदेह सर्वशरीरी आत्मा समस्त जीवात्माओं की परमात्मा, श्री ऐश्वर्य की देवी, शरीर शरीर इंद्रिया इंद्रियां आशयाः तथा मन, नाम नाम रूपे तथा रूप, भगवती लक्ष्मी, प्रत्ययः प्रकाशक, त्वं तुम, अपाश्रयः आधार। मैं अनुवाद पढ़ता हूँ। एक्चुअली में ये पीछे 3 श्लोक के अनुवाद भी पढ़ने हैं, तो आप ध्यान से सुनिए इसको। भक्ति से विरत होकर श्री भगवान को नमस्कार करना चाहिए। भूमि पर दंड के समान गिरकर अर्थात दंडवत प्रणाम करते हुए उपर्युक्त मंत्र का 10 बार उच्चारण करना चाहिए। तब उसे निम्नलिखित प्रार्थनाएँ करनी चाहिए। हे भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी, आप दोनों समस्त सृष्टि के स्वामी हैं, वास्तव में इस सृष्टि के कारण आप ही हैं। माता लक्ष्मी को समझ पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि वे इतनी शक्तिशाली हैं कि उनकी भक्ति की सीमा को पार पाना कठिन है। माता लक्ष्मी को भौतिक बहिरंगा शक्ति के रूप में अंकित किया जाता है, परंतु वे सदैव ईश्वर की अंतरंगा शक्ति हैं। हे ईश्वर, आप शक्ति के स्वामी हैं, अतः आप परम पुरुष हैं, आप साक्षात यज्ञ हैं। आत्मक्रिया की प्रतिरूप लक्ष्मी आपको अर्पित की आदि रूप है और आप समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं। ये अब श्लोक का अनुवाद है तो इसके मेरे पीछे दोहराइए। यहाँ पर उपस्थित माता लक्ष्मी समस्त गुणों की खान हैं, जबकि आप इन गुणों के प्रकाशक तथा भोक्ता हैं। निस्संदेह आप प्रत्येक वस्तु के भोक्ता हैं। आप समस्त जीवात्माओं के परमात्मा हैं और लक्ष्मी देवी उनके शरीर, इंद्रिय तथा मन हैं। उनके भी पवित्र नाम तथा रूप हैं और आप समस्त नामों तथा रूपों के आधार हैं। आप उनके प्रकाशक भी हैं। तात्पर्य कृपया ध्यान से सुनिए। तत्ववादियों के आचार्य मध्वाचार्य जी ने इस श्लोक की टीका इस प्रकार की है। विष्णु को साक्षात यज्ञ के रूप में और माता लक्ष्मी को पारमार्थिक कार्य तथा उपासना के आदि रूप में वर्णित किया गया है। निस्संदेह वे पारमार्थिक कार्य तथा समस्त यज्ञ के परम आत्मा के रूप में बताने वाले हैं। भगवान विष्णु लक्ष्मी देवी के भी परमात्मा रूप को बताने वाले हैं, क्योंकि विष्णु भगवान स्वयं ही सब जीवों के परमात्मा हैं। मध्वाचार्य के अनुसार दो प्रकार के कारक या तत्व हैं, एक स्वतंत्र और दूसरा आश्रित। पहला तत्व परमेश्वर विष्णु है और दूसरा जीव तत्व। लक्ष्मी देवी की गणना कभी कभी जीवों में की जाती है, क्योंकि वे भगवान विष्णु के आश्रित हैं, किंतु गौड़िया वैष्णव लक्ष्मी देवी को निम्न रूप से वर्णित करते हैं, जो बलदेव विद्याभूषण कृत प्रमेय रत्नावली के दो श्लोकों में दिया गया है। इनमें से पहला श्लोक विष्णु पुराण से उद्धृत है। ये ब्राह्मण श्रेष्ठ लक्ष्मी जी भगवान विष्णु की चिर संगनी हैं, इसलिए उन्हें अनपायनी कहा जाता है। वे समस्त सृष्टि की माता हैं। जिस प्रकार भगवान विष्णु सर्वव्यापी हैं, उसी प्रकार उनकी आत्मपराशक्ति माता लक्ष्मी जी भी सर्वव्यापी हैं। भगवान विष्णु की तीन प्रमुख शक्तियाँ हैं, अंतरंगा, बहिरंगा तथा तटस्था। श्री चैतन्य महाप्रभु ने पराशक्ति को भगवान से अभिन्न माना है। इस प्रकार लक्ष्मी भी स्वतंत्र विष्णु तत्व में सम्मिलित है। प्रमेय रत्नावली की कांतिमाला टीका में यह कथन है कि यद्यपि कुछ आधिकारिक वैष्णव शिष्य परंपराएं लक्ष्मी देवी को वैकुंठ की शाश्वत मुक्तात्माओं में परिगणित करती हैं, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने विष्णु पुराण के कथानुसार लक्ष्मी को विष्णु तत्व से अभिन्न माना है। इससे सही निष्कर्ष यह है कि विष्णु से भिन्न लक्ष्मी का वर्णन तब किया जाता है जब शाश्वत मुक्त जीवात्मा में लक्ष्मी के गुण पाए जाते हैं। उसका अभिप्राय भगवान विष्णु की प्रेयसी लक्ष्मी से कदापि नहीं है। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है भागवत कक्षा में। इस पर चर्चा करने से पहले, आज गोविंद घोष महाप्रभु के एक एसोसिएट थे, उनका डिसअपीयरेंस डे है, तो उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। गोविंद घोष जो है अपने बहुत सुंदर कीर्तन के लिए जाने जाते थे, और ये तीन भाई थे। जब भी गोविंद घोष और यह घोष ब्रदर्स कीर्तन करते थे तो महाप्रभु नाचने लगते थे। या गोविंद घोष जहाँ महाप्रभु होते थे, कई बार वह बाहर निकल के वो कीर्तन करते थे, अंदर महाप्रभु हैं तो बाहर, तो महाप्रभु आके उनके बीच में नृत्य करने लगते थे। बहुत जो है सुंदर नृत्य करते थे। और ये जो घोष ब्रदर हैं, ये सारा जीवन जो इन्होंने बंगाल में रह करके प्रचार किया, और ये जो हैं तीनों ब्रदर जो थे, इनमें जो गोविंद घोष और इनके जो दूसरे ब्रदर थे वासुदेव घोष और माधव घोष, ये तीनों ही बहुत सुंदर गाते थे। और हालांकि ये गृहस्थ आश्रम में थे, परंतु इनका कोई संतान नहीं था, और इनकी ड्यूटी का नाम था जो है गोपीनाथ जी। तो एक बार इनको जब बूढ़े हो गए तो इनको चिंता हुई कि जब मैं शरीर छोड़ दूंगा तो मेरी अंतिम क्रिया कौन करेगा। तो जो भगवान गोविंद जो गोपीनाथ जी हैं, उनके सपने में आए, उन्होंने कहा मैं तो करूँगा तुम्हारी अंतिम क्रिया। तो और उसके बाद जब इन्होंने शरीर छोड़ा तो भगवान गोपीनाथ ने इनकी अंतिम क्रिया की, और आज तक करते हैं भगवान। उनकी अंतिम क्रिया को कहा जाता है कि वो आज तक भगवान गोपीनाथ जो है उनकी अंतिम क्रिया को उनके बाद उनके लिए श्राद्ध करते हैं अभी भी। और उनकी जो समाधि है वो राधा कृष्ण के जो पास उसमें नित्य लीला में गोलोक में जो है वो राधा और कृष्ण के लिए गाते हैं हमेशा। और उनकी जो समाधि है वो 64 समाधि एरिया में है। गोविंद घोष तिरोभाव तिथि महामहोत्सव की। हरे कृष्णा। तो जो आप सब लोग रेगुलर आते हैं उनको तो पता, बस कुछ लोग जो कभी कभी आते हैं खास के संडे वगैरह को, ये जो प्रसंग चल रहा है अभी, इसमें दिति और कश्यप का प्रसंग चल रहा था अब तक, जो दिति माता ने जो है कश्यप मुनि से प्रार्थना की थी कि उनको एक ऐसे पुत्र मतलब कोई ऐसे पुत्र को उत्पन्न करना चाहती थी जो इंद्र का शत्रु हो, या इंद्र को मारना चाहती थी। तो उन्होंने जो है उनको एक पुंसवन व्रत करने के लिए कहा, और उस पुंसवन व्रत का जो विधान है वो उन्होंने उनको बताया कि पुंसवन व्रत कैसे करना है, और आपको साल भर तक ये व्रत करना है, उसके बाद आपका एक ऐसा पुत्र होगा कि वो इंद्र को मार सकेगा। परंतु उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर आपने कोई गलती करी इस पूरे साल में, अगर व्रत करने में कुछ भी नियम भंग हुआ और आकर कुछ गलती हुई, तो वो इंद्र का मित्र बन जाएगा, वो आपका पुत्र है जो शत्रु जो है वो इंद्र का मित्र बन जाएगा। तो ये जो अब जो प्रसंग चल रहा है एक्चुअली में, ये प्रसंग है कि जब ये सब बातें हो जाती हैं और वो सुना देते हैं उसके बारे में, तो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछते हैं कि जो है वो पुंसवन व्रत क्या होता है, आप मुझे डिटेल में बताइए, तो और कौन कर सकता है। क्योंकि आप कहोगे पुंसवन व्रत के बारे में पूछने का क्या मतलब, वो बहुत बड़े भक्त हैं, तो वो कहते सुखदेव गोस्वामी जो परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि ये व्रत मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न किया जा सकता है, इसलिए आप मुझे इसके बारे में विस्तार से बताइए। तो फिर सुखदेव गोस्वामी श्री श्री राधा राधिकार मन भगवान की, श्री श्री कृष्ण बलराम जी की, श्री श्री गौर निताय जी की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। तो फिर भगवान जो श्री सुखदेव गोस्वामी जो है वो इस पुंसवन व्रत के बारे में विस्तार से बताते हैं, और उन्हीं के क्रम में ये श्लोक है आज का, जो वो विस्तार से बताते हैं उन्हीं के क्रम ये सुखदेव गोस्वामी जो है वो बोल रहे हैं अभी इस प्रसंग में, और परीक्षित महाराज को बता रहे हैं इस व्रत के बारे में, तो उन्हीं के क्रम में ये श्लोक है। तो इसमें ये बड़ा टेक्निकल श्लोक था, मुझे तो लग रहा था कि पता नहीं इसमें किस तरह की चीज़ें बोली जा सकती हैं, तो क्योंकि हमारे यहाँ हम लोग कई बार जो है, क्योंकि हम नाम संकीर्तन करते हैं, महाप्रभु ने हमें जो दिया है, जो यज्ञ दिया है उसके हिसाब से, तो हमें लगता है कि ये सब चीज़ों का इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, बट इम्पोर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि एक तो इसका वर्णन भागवतम में है, और भागवतम में जो है इसका वर्णन बहुत डिटेल में किया गया है, विस्तृत रूप में। अभी आप देखिए परीक्षित महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं, और सुखदेव ये जो लास्ट चैप्टर है 19वां, अभी ये अगले क्लास में जो है ये कैंटो खत्म हो जाएगा, इन 6th कैंटो। तो ये जो लास्ट चैप्टर इसमें है, तो पूरा डिटेल में बताया है उन्होंने कि पुंसवन व्रत जो है कौन कौन कर सकता है, और इसके सबसे अंतिम में इस अध्याय की जो समाप्ति होती है वो, या इस कैंटो की जो समाप्ति होती है, ये पुंसवन व्रत का क्या फल होगा, सुनने वाले को क्या होगा, करने वाले को क्या होगा, जिन जो करने वाले में माने पति पत्नी में से एक करता है तो दूसरे को क्या फल मिलेगा, तो ये जो है इसका जो है लास्ट में जो अगले लेक्चर देंगे जो वक्ता वो बताएंगे उसको। तो इस ये जो प्रसंग है, इसी प्रसंग में उन्होंने जो है उसको लिया हुआ है कि जो ये पुंसवन व्रत के बारे में, तो पहले तो उन्होंने कहा कि ये व्रत जो है दोनों कर सकते हैं, ये पति और पत्नी में से कोई भी कर सकता है, परंतु पत्नी करे तो ज़्यादा अच्छा है, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, और ये जो है इसके व्रत के बारे में। और फिर ये जो व्रत है वो मार्गशीर्ष यानी आग्रहण महीने के जो है वो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू की जाती है, और कार्तिक के पूर्णिमा को इसकी समाप्ति की जाती है। तो इस तरह से जो है ये मतलब ये व्रत का पूरा विधान एक साल तक चलता है। तो उसी क्रम में जो है इसमें लक्ष्मी जी के बारे में बताया गया है कि जो लक्ष्मी जी हैं वो भगवान विष्णु की चिर संगनी हैं। अब चिर संगनी है तो कई वैष्णव जो परंपराएं हैं या बाहर के जो कई जो फिलॉसफीज हैं वो लोग ये मानते हैं कि जो लक्ष्मी जी हैं वो भगवान की ये मुक्त आत्मा हैं, मतलब अंतरंगा शक्ति नहीं है, मतलब वो लक्ष्मी जी को जो है अंतरंगा शक्ति का हिस्सा नहीं मानते, वो ये मानते हैं कि वो चिर मतलब शाश्वत रूप से मुक्त आत्मा है। और ऐसा उनका मानने का जो तर्क है उसका ये है कि क्योंकि लक्ष्मी जी जो हैं वो समुद्र से उत्पन्न हुई हैं, जब समुद्र का मंथन हो रहा था तो उसमें से लक्ष्मी जी भी प्रकट हुई थी, जैसे कई सारी चीज़ें प्रकट हुई और उसमें से तो एक लक्ष्मी जी भी प्रकट हुई थी, तो सब ने कुछ ना कुछ लिया, शिव जी ने कुछ लिया, इसको भगवान विष्णु ने लिया, क्योंकि सभी उसमें सहयोग कर रहे थे उस समुद्र को मथने में, कुछ देवताओं ने लिया, कुछ दैत्यों ने लिया, तो इस तरह से जो है अलग अलग चीज़ अलग अलग लोगों को मिली। तो ये जो लक्ष्मी जी है वो भगवान विष्णु को मिली, क्योंकि लक्ष्मी जी जो है जब उत्पन्न हुई वहाँ से तो वो किसी और को चाहती नहीं थी, तो भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं आपको जो है इनको भगवान विष्णु हरि को देता हूँ, आप हरि के साथ रहिए, तो बहुत प्रसन्न हुई, फिर उनके साथ रहने लगी। तो कहा जाता है कि जब उनको दिया गया तो भगवान के वक्षस्थल में प्रवेश कर गई, तो इसलिए कहता कि वो हमेशा भगवान के वक्षस्थल पे रहते हैं। श्रीवत्स, जैसे हम सुना होगा हमने श्रीवत्स का जो वो है, तो ये श्री लक्ष्मी जी का प्रतीक है एक्चुअली में। तो लेकिन गौड़िया वैष्णव ऐसा नहीं मानते, प्रभुपाद ने यहाँ क्लियरली उसमें लिखा है परपट में, और प्रभुपाद जो है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को कोट करते हैं कि इसमें इसके लिए कि उन्होंने अपने टीका में लिखा है कि उन्होंने और उन्होंने जो है विष्णु पुराण सॉरी बलदेव विद्याभूषण को कोट करते हैं और उसमें अपने एक श्लोक को कोट किया है विष्णु पुराण से, जिसमें ये बताते हैं कि भगवान जो विष्णु की जो चिरसंगिनी है वो भगवान की अंतरंगा शक्ति है। और वो किस आधार पर कह रहे हैं, तो महाप्रभु ने कहा था कि जो पराशक्तियाँ हैं, जो स्पिरिचुअल एनर्जी है भगवान की, वो भगवान के समान ही हर जगह व्याप्त रहती है, जैसे जितना जिस तरफ जहाँ जहाँ भगवान होते हैं उनकी शक्ति भी वहाँ वहाँ होती है। तो वो चिरसंगनी इस रूप में है कि जहाँ भगवान होंगे वहाँ उनकी शक्ति होगी, तो इसलिए हम भगवान को उनकी शक्ति से अलग नहीं कर सकते, तो इसीलिए वो विष्णु तत्व में समाहित हैं। महाप्रभु ने इसको इसकी व्याख्या दी कि जो लक्ष्मी जी हैं वो भगवान की, वो उनको विष्णु तत्व में गिना जाएगा, अर्थात भगवान की शक्ति में गिना जाएगा, वो कोई मुक्त आत्मा नहीं है। और वो जैसे कि दूसरे आचार्य या दूसरे परंपराएं मानती हैं, न वो मुक्त आत्माएं हैं और न ही जो है उनको मेटेरियल वो समझना चाहिए, क्योंकि कई लोग ये भी प्रश्न उठाते हैं कि वो भृगु और ख्याति जो हैं वो उनकी बेटी हैं, मतलब तो भृगु मुनि और उनकी पत्नी थी ख्याति, जो कि जो नौ बेटियां थी मनु की, जो स्वयंभू मनु की जो नौ बेटियां थी उनमें एक बेटी थी ख्याति, जिनका विवाह हुआ था भृगु ऋषि से, तो उनसे जो पत्नी उत्पन्न हुई थी मतलब पुत्री उत्पन्न हुई उनकी, उसका नाम भी ख्याति सॉरी लक्ष्मी था। तो यहाँ लास्ट में ये लिखा गया है कि वो लक्ष्मी जो है वो ही बारी ये लक्ष्मी जो है वो अलग अलग डिफरेंस लक्ष्मियाँ हैं, मतलब ये भगवान की शक्ति हैं, नाम एक है बट अलग अलग है। जैसे कपिल के लिए भी बोला जाता है, भगवान कपिल के लिए, कि एक कपिल जिन्होंने सांख्य फिलॉसफी दी और दूसरा कपिल जो बाद में आए जिन्होंने तर्कशास्त्र और न्यायशास्त्र की रचना की, कह रहे हैं दोनों व्यक्ति अलग अलग है, नाम एक है बट व्यक्ति अलग है, इसको प्रभुपाद जी ने यहाँ पर थोड़ा सा अलग अलग किया है। जैसे कई बार हमें लगता है कि ये जो भौतिक जगत है, ये भौतिक जगत सब कुछ नीचे से लेकर ऊपर तक पूरी सृष्टि में कुछ भी नहीं है सिपाय भगवान की एनर्जी के, सब कुछ भगवान का एनर्जी है, न कुछ भी नहीं है, सब कुछ भगवान की एनर्जी है। आप जब भी जो भी देखो, ये मिट्टी पत्थर मकान बिल्डिंग कुछ भी, आप जिस चीज़ के बारे में सोचोगे जिस चीज़ का नाम लो वो सब भगवान की एनर्जी है। और वो सब तो खास करके जो उन एनर्जियों में जैसे सूर्य है या हवा है या पानी है, तो कई बार क्या होता है कि हम भगवान से, कई बार कहते हैं लोग हम भगवान से द्वेष तो करते नहीं, तो भगवान से हम इस रूप में द्वेष करते हैं कि भगवान की शक्ति से द्वेष करते हैं। यही सूर्य अभी हमें खराब लगता है और यही सूर्य जो है नवंबर दिसंबर में जब सर्दियों के महीने शुरू में तो बड़ा अच्छा लगेगा, अभी हम इसी सूर्य से परेशान होते हैं, कभी वो बारिश समय खराब लगता है और कभी अच्छा लगता है, यही हवा कभी अच्छा लगता है और कभी खराब लगता है। तो इस तरह से है भगवान की एनर्जी से कई बार हम प्रेम भी करते हैं और कई बार घृणा भी करते हैं कि भाई इतनी धूप हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है, तो परंतु भगवान की एनर्जी जो है इक्वली समान मतलब समान रूप में जो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, समान रूप में जो है, एक तो समान रूप में और समान रूप से पूरे साल में वो अपना डिस्ट्रीब्यूशन करती है। हवा भी पूरे साल कम ज़्यादा चलता ही रहता है, सूर्य की रोशनी भी इसी तरह से पूरे साल होती है, या जितने भी आप एनर्जी के बारे में देखो वो समान रूप से हर व्यक्ति को उपलब्ध होती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो आश्रय तत्व है, आश्रित तत्व है, जो जिसको जीवात्मा को आश्रित तत्व बताया गया है, तो आश्रित तत्व जो है वो इस भगवान के आश्रय के बिना जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि भगवान की जो शक्तियाँ हैं हर जगह काम कर रही हैं। तो आश्रित तत्व जो है वो आश्रय के बिना जीवित नहीं रहेगा कभी, ये इम्पॉर्टेंट है इसमें। और इसमें जो दूसरा पॉइंट था कि जो पीछे के श्लोकों में यज्ञ के बारे में चर्चा थी कि जो लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करना चाहिए, सुखदेव गोस्वामी इसमें कह रहे हैं, तो यज्ञ जो है वो भी जीवन का एक भाग है। और यज्ञ जितने भी यज्ञ होते हैं वो सब के भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए ही होते हैं, क्योंकि कोई मटेरियल व्यक्ति भी, जो बाहर का व्यक्ति भी अगर छोटा सा हवन करता है घर में, तो उसमें जी जो पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं उसमें भी लास्ट में जो है वो विष्णु का नाम उच्चारण किया जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु के नाम उच्चारण किए बिना कोई यज्ञ जो है वो सफल नहीं होगा। तो लास्ट में जो है ओम विष्णवे नमः इस तरह के मंत्र का, या जो है ये सब जो कुछ जो है वो विष्णु के लिए है, हमारे लिए नहीं है, इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है। जैसे हम लोग भी यज्ञ करते हैं, यहाँ भी यज्ञ होता है, आप देखोगे कि यहाँ भी हम लोग जैसे खास करके दिसंबर में एक बार तो हमारे मंदिर में भी यज्ञ होता है, और जगह कई टाइम जैसे अभी मंदिर की स्थापना हो रही है रोहिणी में, तो उससे पहले यज्ञ किए गए, दो बार तीन बार यज्ञ किए गए। तो उस यज्ञ में जो है तो ऐसा नहीं कि यज्ञ का विधान नहीं है और यज्ञ करना कोई वर्जित है, ऐसा नहीं है, बट क्या है कि इसका शुद्धिकरण बहुत मुश्किल है। इस यज्ञ में इतनी शुद्धता से करना, इतने शुद्ध रूप में जो उसमें जो डिटेल्स दिए गए हैं उसको फॉलो करते हुए करना मुश्किल है। तो क्या होगा कि जैसे आप उसमें कोई चूक करोगे तो क्या होता है, वो पूरा परिणाम नहीं देता, वो फल जो है अपना पूरा फल नहीं देगा वो यज्ञ। जैसे आप इस पुंसवन संस्कार में दिति ने एक छोटी सी गलती की, आप देखो इस व्रत में दिति ने एक छोटी सी गलती की, उन्होंने पूरे व्रत रखे, हर तरह सारे नियम करती, फॉलो करती थी, एक दिन क्या हुआ, वो बिना पैर धोए जो है, वो शाम के समय था और बिना पैर धोए लेट गई। तो दोनों का मनाही थी कि बिना पैर धोए जो है आपको नहीं सोना है, जो कश्यप मुनि ने पहले बता दिया था उनको, और संध्या के समय नहीं सोना है। तो संध्या के समय सोई और पैर बिना धोए सोई, तो हुआ क्या, जिस वरदान को प्राप्त करना चाहती थी वो उल्टा हो गया। मतलब क्या मांग रही थी, इंद्र के शत्रु को उत्पन्न करना चाहती थी, पर हुआ क्या, इंद्र का मित्र पैदा हो गया, यानी मरुदगण पैदा हो गए उससे। तो ये जो है इसीलिए जो है गौड़िया वैष्णवी बताते हैं कि ये जो कर्मकांड है उसको नहीं करना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि हम कर्मकांड के विरोधी हैं, या कर्मकांड एग्जिस्ट नहीं करता, या कर्मकांड पद्धति नहीं है, क्योंकि वो भी वेद की पद्धति है, हम इसको मना नहीं करते कि वो पद्धति नहीं है, बट क्या है कि उसमें गलतियां होने के बहुत सारे चांसेज होते हैं। जैसे हम लोग भी यज्ञ करते हैं तो हम बार बार बोलते हैं इदम कृष्णा इदम न मम, इदम राधिका ये इदम न मम, इदम कृष्णा इदम न मम, क्यों बोलते हैं, ये राधा के लिए है मेरे लिए नहीं है, ये कृष्ण के लिए है मेरे लिए नहीं है, क्योंकि उसके अंदर भी हमें यह भाव आएगा कि यह सब कृष्ण के लिए है। ये बार बार इस बोलने का ही मतलब होता है। आप देखते हो ना जैसे हम यज्ञ करते हैं बोलते हैं, जैसे नवदीप प्रभु सामने बैठते कई बार, तो इदम कृष्णा इदम न मम, इदम राधा ये इदम न मम, इदम गुरुवे इदम न मम, ये गुरु का है, ये राधा का है, ये कृष्ण का है, मेरा नहीं है। तो भाव यही होता है, सेक्रीफाइस जो अंग्रेजी में शब्द है उसका वो यज्ञ को एक्चुअल में रिप्रेजेंट नहीं करता सही रूप में। तो सेक्रीफाइस का मतलब होता है त्याग, तो त्याग तो इसलिए कि हम कुछ ना कुछ त्याग करते हैं, इसलिए उस शब्द को उससे रिलेट कर दिया जाता है। फिर जो भगवद गीता में भगवान ने तीन तरह के यज्ञ बताए हैं, सतोगुणी यज्ञ होता है, रजोगुणी यज्ञ होता है और तमोगुणी यज्ञ होता है। भगवान जो है भगवद गीता के 17वें अध्याय के 11, 12 और 13 तीनों श्लोक में जो है वो यज्ञ का वर्णन करें, डिफरेंट काइंड्स के यज्ञ हैं। और यज्ञ की पत्नी कौन है, दक्षिणा। यज्ञ स्वयं भगवान का नाम है, यज्ञ जो है भगवान विष्णु जो है जो आहुतियां जो ग्रहण करते हैं, जितने भी यज्ञ किए जाएंगे चाहे वो कर्मकांडी हो या वैष्णव यज्ञ हो, सब भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए होता है। वो इनडायरेक्टली होता है, ये डायरेक्टली होता है। जो कर्मकांडी लोग करते हैं वो इनडायरेक्टली होता है, पहले वो देवताओं की आहुति देते हैं, बाद में भगवान विष्णु की आहुतियां देते हैं, और इनडायरेक्ट होता है, पर होता है भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए ही है। और भगवान कह रहे हैं उसमें, उसी में, विधिहीनम असृष्टानम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम ताम सम परिचक्षते, कि अगर उस यज्ञ में वेद मंत्र को नहीं पढ़ा गया, कोई किसी भी यज्ञ में दान नहीं दिए गए, दक्षिणा नहीं दी गई, देखिए दान और दक्षिणा दोनों में बहुत अंतर होता है। अगेन हम लोग कई बार हर चीज को रिलेट करते हैं, एक ही बात है, दान दक्षिणा कर लो। दान अकारण होता है, विदाउट एनी रीजन, आपने किसी को कुछ चीजें दे दी और बिना मोटिव दे दी। दक्षिणा कर्म का प्रतिफल है, जिस व्यक्ति ने यज्ञ कराया, जिस व्यक्ति यज्ञ जो कराने वाला प्रीस्ट है, जो कराने वाला व्यक्ति है, उसको उस यज्ञ कराने के स्वरूप दक्षिणा दी जाती है। तो दक्षिणा एक तरह का पुरस्कार समझ लीजिए, मेहनताना समझ लीजिए, या उसको आप समझ लीजिए काम कराने का के पैसे हैं, इस तरह से कि वो दक्षिणा इस रूप में हो जाती है। तो यज्ञ बिना दक्षिणा के संपन्न नहीं की जानी चाहिए, पर दान ऑल टुगेदर इज अ डिफरेंट थिंग। कई बार हम जैसे आप इसको इस तरह से समझो कि राजा हरिश्चंद्र ने जब पूरी पृथ्वी का दान दे दिया, किसको, विश्वामित्र को, उन्होंने अपने पूरे राज्य का दान दे दिया, जो उसके राजा थे वो, पूरी पृथ्वी का दान देने के बाद विश्वामित्र ने क्या कहा कि दान तो दे दिया, अब दक्षिणा दो। तो उन्होंने, अब दान की हुई चीज पर आपका अधिकार नहीं है। अब व्यक्ति ने जब सब कुछ दे दिया तो उसके पास था ही नहीं कुछ, तो देगा क्या। तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि दान और दक्षिणा में डिफरेंस है। तो उन्होंने कहा दक्षिणा दो, तो फिर उन्होंने जो है वो एक शमशान ने काम किया, और फिर इस तरह से उन्होंने वो अलग आप स्टोरी आप सबको पता होगा कि उन्होंने इस तरह से दक्षिणा दी उनको। तो ये डिफरेंट चीजें हैं। तो लेकिन जो भगवान विष्णु जो यज्ञ जो अग्निदेव हैं, वो सारे यज्ञ को, उनकी पत्नी कौन है, स्वाहा, जो अग्निदेव हैं वो सारी सामग्री को स्वाहा के माध्यम से एडॉप्ट करते हैं और फिर विभिन्न देवताओं को और भगवान तक उसको पहुंचाते हैं, जिसका जो भाग है उसको वो पहुंचा देते हैं अपनी पत्नी स्वाहा के माध्यम से। और उसके अंत में जो है फिर भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जो है फिर कुछ आहुतियां डाली जाती हैं, और वो जो है, और उसके बाद दक्षिणा दी जाती है। तो फिर भगवान नारायण और लक्ष्मी, आपने लक्ष्मी और नारायण को संतुष्ट किया, ये तरीका होता है एक्चुअल में। परंतु फिर अब हमारे लिए क्या है कि हम भी कल से शुरू कर दें, नहीं, भगवान पहले बोल के गए हैं 10वें अध्याय के 25वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, मैं यज्ञ में जप यज्ञ हूं। कि हमें कौन सा यज्ञ करना है, जप यज्ञ करना है। और परंतु इस जप यज्ञ में भी बहुत सारी सावधानियां होती हैं। हमें, हम आलस के कारण समझते हैं कि ठीक है जप कर लो सब हो जाएगा, नाम ले लो सब हो जाएगा। हम लोग प्रीचिंग भी करते हैं इसी तरह से ज्यादातर, बट ऐसा नहीं है। कि क्या है कि जो आप नाम लोगे हो जाएगा नाम से, डाउटलेसली, इसमें कोई शक की बात भी नहीं है। बट क्या है कि ये जो अगर हम साथ में कुछ संस्कारों को, कुछ और विधि विधानों को अगर ठीक से फॉलो करेंगे तो हम ज्यादा शुद्ध होंगे और जल्दी से जो है अपनी डेस्टिनेशन को प्राप्त कर लेंगे। हम जो नाम लेते हैं वो नाम क्या है, यज्ञ कर रहे हैं हम, नाम ले रहे हैं क्योंकि भगवान ने बोला है कि यज्ञा नाम जप यज्ञ, महाप्रभु बता के गए हैं। तो फिर परंतु हम जो नाम लेते हैं उस नाम का जो है बहुत सारा हिस्सा जो है हमारे प्रेजेंट जो कर्माज हैं उसको काटने में चला जाता है। जो हम रोज रोज की जो ये बड़ी सारी चीजें कर रहे होते हैं और बड़े सारे हमारे पिछले कर्म जो हैं वो एक्युमुलेटेड हैं और साथ में अभी जो करंट कर्म कर रहे होते हैं, क्षमा करिएगा, तो नाम का जो एक फल है, नाम का जो एक प्रभाव है वो उस चीज को काटने में चला जाता है। क्योंकि जब तक वो कटेगा नहीं आप शुद्ध नहीं होगे, और शुद्ध नहीं होगे तो शुद्ध नाम नहीं जपोगे, और शुद्ध नाम नहीं जपोगे तो अपने डेस्टिनेशन तक आप कभी नहीं पहुंच पाओगे। इसीलिए आप देखोगे कि लोग 15-15 साल, 20-20 साल, 25-25 साल से जपते जा रहे, कुछ होता ही नहीं। 15 साल से लगा हूं प्रभु जी, 15 साल से कुछ नहीं, क्योंकि इसके साथ और भी बहुत कुछ करना होता है। जैसे प्रभुपाद ने 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स दिए, भी आपको इसके साथ में फॉलो करना है।
इसी तरह से वैदिक जो उसके हिसाब से जो है, क्योंकि फॉरेलिटी प्रिंसिपल्स किस लिए हैं, उसका जब से तो कोई मतलब नहीं है, वो केवल आपको आदमी बनाने के लिए है। क्योंकि ये माना जाता है कि हम आदमी के स्तर पे भी नहीं होते, तो ये फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स फॉलो करके जो है हम आदमी के स्तर पर आते हैं। तो उसके बाद जो है फिर हम जप करेंगे तो इससे जप का ज्यादा लाभ होगा, इसीलिए किया जाता है। नहीं आप कहोगे फिर जो बाहर व्यक्ति जप करता है या नाम लेता है भगवान को व्यर्थ गया, नहीं, भगवान का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता, इट नेवर गोज इन वैन, कभी नहीं। चाहे व्यक्ति कैसे भी ले रहा है, गाली भी देते हुए अगर भगवान कृष्ण को गाली देते हुए भी नाम उच्चारण कर रहा है, तब भी उसका वो नाम उच्चारण जो है वो गलत नहीं जाएगा। कोई हराम शब्द बोलता है तब भी भगवान उसमें से राम ले लेते हैं, हौ को छोड़ देते हैं, भगवान की इतनी महिमा है। परंतु क्या होता है कि हम इतने सारे कर्म और कर रहे होते हैं और इतने सारे पाप कर्म हो रहे होते हैं हमसे, कैसे पंचयज्ञ करना चाहिए व्यक्ति को, हमें पता भी नहीं है किसी को कि पंचयज्ञ क्या होता है। हर गृहस्था को पंचयज्ञ करना चाहिए, पता ही नहीं पड़ी पंचयज्ञ क्या होता है। तो हम नहीं जो करते, ये पाप एक्यूमुलेटेड होता है, इससे हम पाप जो है उसकी उसको मान लो आप नहीं भी कर रहे हो पाप, तो इससे भी पाप बढ़ रहा है। हम चलते हैं, हम सांस लेते हैं, हम पानी पीते हैं, इससे कई सारे जीवों की हत्या होती है, उससे भी पाप जो है इकट्ठा होता है। तो हम मैं जो कहना चाह रहा था कि हमारा जो हरि नाम है उसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है इन पापों को खत्म करने में चला जाता है। अब समझ रहे हो, दवाई कम ले रहे हो, चीजें ज्यादा हैं बड़ी, तभी प्रभुपाद कहते हैं कि 24 घंटा जपो। क्या कहते हैं कि 24 घंटे जपेगा तो 101% उसका शुद्धिकरण जो है वो होगा ही होगा। हम जपते हैं एक घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 2 घंटे, और बाकी 22 घंटे क्या करते हैं। तो क्या होता है कि ये जो नाम है फिर उसको काउंटर करता है फिर, क्योंकि आप शुद्ध हो गए नहीं तो आप आगे जाओगे नहीं। तो और ये जो है उन्होंने जैसे हम गर्भाधान से लेकर और अंतिम संस्कार तक ये जो 16 संस्कार हैं, इसीलिए वेदों में दिया गया कि सारे संस्कार को व्यक्ति को करने चाहिए। अब हम लोग बताते हैं ना, जैसे प्रभुपाद जी ने बार बार लिखा है कि अगर कृष्णा कॉन्शियस बच्चे चाहिए तो आपको गर्भाधान संस्कार करना चाहिए। हमारे बुक स्टॉल में भी संस्कार बुक आ गया है, ये कोई नई चीज नहीं है, ये बहुत पुरानी चीज है जो वेदों में सब कुछ है। ये सब ऑब्वियसली कर्मकांड का हिस्सा है, बट ये कर्मकांड हमारे शुद्धिकरण के लिए है, कर्मकांड पद्धति भी शुद्धिकरण के लिए है। आप कहोगे जो बाहर जो लोग यज्ञ करते हैं, कर्मकांड करते हैं, फिर उनका शुद्धिकरण नहीं होगा, होगा उनका भी शुद्धिकरण। क्यों होगा और कैसे होगा, क्योंकि उसमें भी भगवान विष्णु के नाम का उच्चारण होता है, और ऐसा कोई भी मंत्र नहीं पढ़ा जाता, कोई पंडित जो है ऐसा कोई मंत्र नहीं पढ़ता जिसमें ओम का नाम ना हो, ओम शब्द नहीं आता हो, ओम भी भगवान का नाम है। तो इस तरह से जो है वो उनका प्यूरिफिकेशन प्रोसेस उनका भी शुरू हो जाता है, बट बहुत स्लो है और इनडायरेक्ट है। समस्या क्या है उस प्रोसेस में कि बहुत स्लो है और इनडायरेक्ट है। तो इसीलिए जो है वो कर्मकांडी व्यक्ति भी कर्मकांड करके भी जो है वो चीजें ठीक से अपने आप को शुद्ध नहीं कर पाता। हम भी यहां आकर कृष्णा कॉन्शियस में आकर बड़े टाइम से नाम ले रहे हैं, जप कर रहे हैं, बार बार सुनाया, भक्त लोग बताते हैं नाम करो शुद्ध हो जाओगे, सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, शुद्धिकरण तो हो नहीं रहा, थोड़ा बहुत होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, पर बहुत कम होता है जिस पेस में होना चाहिए। भक्ति सिद्धांत महाराज बताते हैं कि 12 से 15 साल के अंदर अगर कोई नाम जप कर रहा है तो उसको जो है वो कम से कम उस व्यक्ति को जो है उसको एक तो निष्ठा के स्टेज तक पहुंच जाना चाहिए, कम जो है अनर्थ निवृत्ति के बाद किसका अस्तित्व जाता है निष्ठा का। तो और इस 15 साल में जो है उसको नाम के स्तर में कह रहे हैं कि पहला क्या होता है नामापराध, दूसरा क्या है नामाभास की स्थिति में पहुंच जाना चाहिए। किसी भी साधक को भक्ति सिद्धांत महाराज कह रहे हैं कि 10 से 15 साल तक अगर वो जप कर रहा है ठीक से तो उसको नामाभास की स्थिति तक आना ही चाहिए। अगर वो नहीं आ रहा है इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे ऐसे कर्म कर रहा है जो अनर्थपूर्वक है, बहुत अनर्थकारी कर्म है, तभी वो इतने सालों में जो है वो नामाभास की स्थिति तक नहीं पहुंचा है। और नामाभास का स्थिति क्या मतलब है, लिबरेशन की स्थिति। नामाभास की स्थिति का मतलब है लिबरेशन की स्थिति। शुद्ध नाम तो मुक्त आत्माओं का काम है, शुद्ध नाम जीव लेना, आप समझे, शुद्ध नाम मुक्त आत्माएं लेते हैं, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परम। तब मद भक्ति भगवान कहना लभते परम, जब वो ब्रह्म भूत अवस्था में पहुंच जाता है। तो ब्रह्म भूत अवस्था तक पहुंचने के लिए ये सारी चीजें हैं। इस तरह से अगर हम इन संस्कारों को, जो कि गर्भाधान से लेकर अंतिम क्रिया तक, अगर हम संस्कारों को साथ में फॉलो करें और भगवान के नाम का जप करें, साथ में जो वैष्णव आचार्यों ने जो चीजें दी हैं हमें, जो प्रभुपाद ने फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स दिए हैं और जो तरीके दिए हैं, जैसे उपवास करने के, जैसे एकादशी क्यों रखते हैं हम, या फास्टिंग क्यों करवाई जाती है, क्या होता है उससे? शुद्धिकरण होता है हमारे में। शुद्धिकरण किस रूप में होता है? हमारे जो है वो टॉलरेंस यानी सहन शक्ति बढ़ती है। फास्ट करने से सबसे पहला परिणाम क्या होता है? हमारी सहन शक्ति बढ़ती है। तो इसलिए जो है हर जितने भी प्रोसेस दिए गए हैं, चाहे वो वैष्णव आचार्यों ने दिए हैं, चाहे वो वेदों में दिया गया है या कर्मकांड में दिया गया है, सबका उद्देश्य जीवात्मा को शुद्ध करना है। तो इस प्रोसेस में भी अगर हम इस प्रोसेस को करेंगे इनको, तो निश्चित रूप से हम शुद्ध हो जाएंगे। क्योंकि आप देखो, जैसे हम कई सारी चीजें हमारे यहां भी होती हैं और दिए जाते हैं, हम क्यों नहीं करते? आलस के कारण। हो जाएगा, सब नाम ले लो, हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। नहीं, जरूरत है। नहीं तो आपका जो पेस है वह स्लो हो जाएगा, आपके जो ये नाम जप है वो प्रभावहीन हो जाएगा। इसीलिए बाकी जो संस्कार हैं, बाकी जो रूल्स हैं, बाकी जो चीजें हैं, उसको साथ में करने की आवश्यकता है। भगवान को भोग लगा के खाना, भगवान के सामने प्रणाम करना, ये सब जो चीजें हैं, वैष्णवों को प्रणाम करना, वैष्णवों से घृणा नहीं करना, आप समझ रहे हो? कहीं कैसे भी व्यक्ति है, अगर कोई वैष्णव दिख रहा है, आप तिलक लगाया होगा तो उसको प्रणाम करिए, हाथ जोड़िए, कम से कम हरे कृष्णा बोलिए। ये सब प्रोसेस है शुद्धिकरण के, ये सब हम साथ में करेंगे तो हमारा नाम जप जो है बहुत फलदायी होगा। हम दूसरे वैष्णव हैं, दूसरे कंट्री के हैं, दूसरे मंदिर के हैं, तो हम अपने वैष्णव को तो प्रणाम करते हैं उनको, ठीक है कि हम बार बार घुटने टेक के प्रणाम नहीं कर सकते, हम हरे कृष्णा बोल सकते हैं, कम से कम सिर झुका सकते हैं, अभिवादन कर सकते हैं, हमें लगता है कि बहुत भीड़ है तो कम से कम वहां जाने एंटर करने से पहले प्रणाम कर सकते हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है, जैसे हम लोग मायापुर जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, आप देखोगे बहुत सारे सन्यासी हैं, कोई जैसे आप किससे बात करो, एक सन्यासी आ गया, आपने एक बार प्रणाम कर लिया, पता चला दूसरा आ गया, फिर प्रणाम कर लिया आपने, तीसरा आ गया, अरे यार कितनी बार करोगे, जब देखो सन्यासी निकलते हैं, आप समझ रहे, फिर हम ढीले पड़ जाते हैं। हो सकता है आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हो, तब भी कोई बात नहीं, हाथ जोड़ के प्रणाम कर लीजिए, हरे कृष्णा बोल दीजिए, वो सुनते हैं नहीं सुनते हैं उससे कुछ नहीं, क्योंकि इससे ये आप अपने लिए कर रहे हो, उनके लिए नहीं, इससे आपका जप फलदायी होगा। ये हम अपने ऊपर कृपा कर रहे हैं, हमारा जप इससे जो है, हमारा जप इससे ज्यादा फ्रूटफुल होगा, ये जरूरी है एक्चुअली में। और अब इसी क्रम में देखिए कि भगवान ने हर वर्ण और हर आश्रम के लिए जो है प्यूरिफिकेशन प्रोसेस दिया है, हर वर्ण और हर आश्रम के लिए। भगवान भगवद्गीता में जो है 18वें अध्याय के जो 42वां श्लोक, 43वां श्लोक, 44वां श्लोक, पहले ब्राह्मण के लिए क्या बताते हैं? समो दमा तपस्तोचम शांति आर्जम मेव च ज्ञान विज्ञान मास्तिक्यम वर्म कर्म स्वभावजम। स्वाभाविक रूप से ब्राह्मण के अंदर ये सब होना चाहिए, और हम बन रहे हैं वैष्णव, क्या बन रहे हैं? और क्या वैष्णव को क्या कहा जाता है? वो हजारों हजारों ब्राह्मण से ऊंचा है। तो हमारे पहले एक ब्राह्मण का गुण तो कल्टिवेट करो, हजारों ब्राह्मण से ऊंचा होने के लिए वैष्णव तो हैं, हम वैष्णव बनने का प्रयास भी कर रहे हैं, बट ये गुण तो इनबिल्ट होना चाहिए फिर हमारे अंदर, ये गुण तो हमारे अंदर इनबिल्ट होना ही चाहिए। क्या क्या थोड़ा बताऊं? समो, अब पहला या समो, नियमों का पालन करना या शांत रहना, दमो, इंद्रियों का निग्रह करना, आप समझ रहे हो? समो दमा तपा, तपस्या करना, शौचम, पवित्र रहना, बाहर से और अंदर से दोनों तरह से पवित्र रहना। तो अंदर की पवित्रता हम कैसे करते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। परंतु बाहर की पवित्रता भी उतनी आवश्यक है कि हमें बाहर से भी अपने कर्म को भी पवित्र रखना चाहिए। आप समझ रहे बात को, जैसे हम टॉयलेट जाते हैं या उसमें जाते हैं, दिल्ली शंका के जाते हैं, हाथ धोना, पैर धोना, कुल्ले करना, ये सब छोटे मोटे प्रोसेस हैं, हम सबको आना चाहिए, ये प्रोसेस हैं ये। ठीक है सब हो जाता, नाम ले रहे हैं, हो गया। ये नाम तभी फलदायी नहीं होता, तभी नहीं फलता नाम। हमें लगता है 15 साल कुछ नहीं हो, कभी भी नहीं होगा, कई जन्म हो जाएंगे, 15 जन्मों वाला है ये प्रोसेस जो है, 15 जन्मों वाला है। सब कुछ करना है, तपस्या, और क्या तपस्या करते हैं हम। तो अपने आचरण को ब्राह्मण के अनुसार, ब्राह्मणिकल जो क्वालिटीज है उसको डेवलप करना, ये ब्राह्मणिकल क्वालिटीज है, मतलब समो दमा शौचम शांति, आप मतलब सहनशील होना, आर्जव सिंपल रहना, ऑनेस्ट होना, ईमानदार होना और सरल होना, ज्ञान का मतलब स्पिरिचुअल नॉलेज को गेन करना, विज्ञान उस स्पिरिचुअल नॉलेज को प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करना, विज्ञान, ये कहने, ये ब्राह्मण के स्वभाव होने चाहिए। और हम क्या हैं, ब्राह्मणों से बड़े, वैष्णव को ब्राह्मण से बहुत ऊंचा बताया गया है, ब्राह्मण तो कहीं टिकता ही नहीं है। तो क्या हमारे अंदर ये गुण हैं? पहले ब्राह्मण वाले गुण तो डेवलप करें, तभी वैष्णव बनेंगे ना। वैष्णव में ये गुण जो है इनबिल्ट होने चाहिए, होने ही चाहिए। वैष्णव का मतलब है जिसके अंदर ये सारे गुण हो, ये तो ब्राह्मण के गुण बताए गए हैं। और वैष्णव का मतलब कई ब्राह्मण के सारे गुण तो हैं ही हैं, अलग से वैष्णवों के अलग से गुण अलग हैं, तो ब्राह्मण है। और इतना ही नहीं है, सम धृति क्षमादम अस्तोयम शौचम अंद्रियमेव च, इसमें कहा गया धृति क्षमा दमस्तोयम शौच इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्य अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, 10 धर्म के लक्षण हैं। ये जो है ये हर व्यक्ति में बताया गया कि हर जीवात्मा में होना चाहिए। जीवात्मा के धर्म नहीं है, फिर ब्राह्मण के धर्म नहीं है, तो वैष्णव कैसे बनेंगे? फिर भगवान कह रहे हैं दिव्य गुण होगा तो वैष्णवता जो है, भक्ति महाराज बताते हैं कि सरलता ही वैष्णवता है, सिंप्लिसिटी इज वैष्णविज्म। तो कैसे होंगे सिंपली सिंपल, आप समझ रही है, ब्राह्मण के गुण हमारे नहीं है। फिर जो धृति, 10 धर्म के लक्षण ये मनुस्मृति में और महाभारत में ये इसके जो है वो एग्जाम्पल पाए जाते हैं। धृति धैर्य रखना, क्षमा कर देना, हमारे अंदर क्या भाव होने चाहिए, ग्लिम्प्स बता रहा हूं आपको। धृति धारण करना, धैर्य धारण करना, क्षमा कर देना, स्वाभाविक रूप से होने चाहिए। और वैष्णव के अंदर तो ये प्रोमिनेंट है, उसके अंदर तो होने ही चाहिए, कोई एक्सक्यूजेज नहीं है। अगर हमें लगता है कि हम वैष्णव हैं और हम वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमें ये हमारे अंदर ये सारे गुण होने चाहिए, तभी हमें वैष्णव कहलाने के अधिकारी हैं कि हम वैष्णव हैं। ये आउटवर्डली कुछ नहीं होगा, ये खाली फौजी का ड्रेस पहन के कोई फौजी नहीं बन जाता। ये फौजी का ड्रेस है ना, ये बढ़िया सिखा है, बढ़िया तिलक, ये बहुत बढ़िया धोती कुर्ता फर्स्ट क्लास, प्रभु जी अच्छे लग रहे, माला भी पहनी हुई है और साथ में एक लटक भी रहा है। तो क्या मतलब है ये आउटवर्डली है, ये बाहर की चीजें मदद करती हैं, ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं मदद करती, मदद करती हैं, बट इंटरनल ज्यादा है, ये प्रोसेस इंटरनल ज्यादा है, आंतरिक पद्धति है, ये बाह्य पद्धति नहीं है इतनी। धृति ही क्षमा दमस, दमा मतलब इंद्रियों को निग्रह करना, और इंद्रिय का मतलब हम समझ लेते हैं ये केवल एक इंद्रिय, इंद्रिय का मतलब है 10 इंद्रिय, और खास करके 5 ज्ञान इंद्रियां जिनको हमें कंट्रोल में करना है। इन ज्ञान इंद्रियों को कंट्रोल में करना है, पहले कर्म इंद्रियां हो जाएंगी अपने आप अगर हमने ज्ञान इंद्रियों को कंट्रोल में कर लिया। तो इसको दमन करना है, दमस। अस्तेयम का मतलब था चोरी ना करना। क्या फर्क पड़ता है, यहां पड़ा है कोई स्किन को यूज तो आता नहीं, हम उठा लेते हैं, तो चोरी है, या तो आप बोल के ले जाओ अलग बात है, नहीं तो चोरी है, चोरी खीरे की हो यार हीरे की, सजा बराबर मिलेगी, क्योंकि चोरी है। अब मैंने खीरा लिया था प्रभु जी, पर खीरा लिया था तो चुरा के लिया ना आपने। हालांकि यमलोक में जो इसका निर्धारण होता है वो वस्तु के मूल्यांकन के हिसाब से होता है, पर चोरी का वो तब भी होगा, मगर खीरे के लिए आपको कम दंड मिलेगा, ये फैक्ट है ये, मगर चोरी का दंड तो आपको तब भी मिलेगा। अस्तेयम, और इसके बाद क्या है, इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह का मतलब है कि हमें इंद्रियों को संयमित करना है। फिर है धीर बुद्धि, इस जो हम धीर का मतलब होता है बुद्धि, तो बुद्धि को भगवान की सेवा के लिए प्रयोग करना है। विद्या, स्पिरिचुअल नॉलेज को गेन करना है। सत्यम, सत्यवादी बनना है, ट्रूथफुल। अक्रोधो, फ्री फ्रॉम एंगर, जो है क्रोध से रहित होना है। प्रभुपाद लिखते हैं 16वें अध्याय के 3वें श्लोक, 3रे श्लोक के परपट में कि क्रोध जैसे करने का मतलब है कि जैसे ही हम क्रोध करते हैं हमारा सारा शरीर पॉल्यूटेड हो जाता है, सारा शरीर जो है इमीडिएटली पॉल्यूटेड हो जाता है। तो इसलिए एंगर से फ्री रहने का प्रयास करना चाहिए, कम से कम वैष्णवों को, ब्राह्मणों को। और तो वैष्णवों के लिए कितनी बड़ी बात है आप सोचिए। फिर और ये कह रहे हैं ये 10 जी चीजें जो हैं ये प्रमुख रूप से धर्म के लक्षण हैं जो किसी भी वैष्णव में और किसी भी ब्राह्मण में होने ही चाहिए। और की जिम्मेदारी नहीं है आपको, किसी और में नहीं है, आप करो, क्योंकि आपके लिए कहा गया, शास्त्र आपके लिए कह रहा है। ये जो पीछे मैंने बताया है श्लोक, ये भगवान ब्राह्मणों के लिए कह रहे हैं, ब्राह्मण के अंदर होना चाहिए ये गुण जो है, वैष्णवों के अंदर होना चाहिए। तो इसलिए और यही ये हम इस चीजों को नहीं करते, इनको डेवलप नहीं करते, तभी क्या है कि हम इतने समय से माला करते हैं, इतने समय से सब कुछ चल रहा है, तो हमारा जो प्रोसेस, हमारा जो डेवलपमेंट है भक्ति में वो बहुत स्लो होता है, हमें पता ही नहीं चलता, हम बाहर जाके फिर वही चीजें करने लग जाते हैं। इसीलिए जो है हमारे अंदर जो डिवाइन क्वालिटी है वो विकसित नहीं होती। ये सब कनेक्टेड है, मतलब जब तक वो दिव्य गुण हमारे अंदर विकसित नहीं होंगे। और दिव्य गुण क्या है, जैसे कोई माला करेगा तो सबसे पहला गुण क्या प्रकट होता है, फियरलेसनेस, वो निर्भय हो जाएगा। हमें से कोई कह सकता कि मुझे डर नहीं लगता, चाहे मैं यहां बैठा हूं या आप यहां बैठे हैं, हमें से कोई कह सकता मुझे डर नहीं लगता किसी चीज से, है ही नहीं, फियरलेसनेस कह रहे हैं। इसका पहला लक्षण क्या प्रकट होगा, उसकी वो निर्भय हो जाएगा, ये डिवाइन क्वालिटी है। फिर सिंप्लिसिटी, सरलता आ जाएगी, हम सरल होंगे, कितने सरल हैं हम, कहीं ना कहीं जोड़ तोड़ जुगाड़ इधर इधर भक्तों के समाज में भी करते हैं, बाहर तो छोड़िए हम बिजनेस में जो करते हैं तो ठीक है, और भक्तों के समाज में भी वही मेंटेलिटी लेके वही सारी चीजें करते हैं। फिर नॉन वायलेंस, अहिंसा, अहिंसा के ऊपर, हम तो हिंसा करते नहीं, मीट मछली खाते नहीं, अंडा चीजें खाते नहीं, तो हिंसा नहीं करना, ये नहीं है हिंसा का मतलब। हिंसा का मतलब है दूसरे व्यक्ति को कष्ट नहीं पहुंचाना, आपकी बातों से आपने किसी व्यक्ति को ऐसी बात बोल दी कि बेचारा बहुत बुरी तरह से परेशान हो गया और अंदर अंदर बहुत चिढ़ गया, वो आपने उस व्यक्ति के क्या जो है वो खाल उतार दी अपने बातों से, तो ये हिंसा है। प्रभुपाद लिखते हैं अपने परपर्स में इसको, ट्रूथफुलनेस, ये सब डिवाइन क्वालिटीज हैं। हम सत्यवादी हैं, वो कौन बोल सकता है कि मैं सत्यवादी हूं, या जब मैं कृष्णा कॉन्शियस में मैं माला कर रहा हूं मैं बहुत सत्य बोलता हूं, प्रभु जी कभी झूठ नहीं बोलता, नहीं करते हम ये सब। और तभी हमारे अंदर ये चीजें डेवलप ही नहीं होती, तभी हमारी इसका जो हरि नाम है उसका प्रभाव, हम तो कंठी पहन के तुलसी हाथ में लेके भी धरल्ले से झूठ बोलते हैं, सेकंड से पहले से बाहर भी इतना नहीं बोलते हैं जितना अंदर बोलते हैं आप, माला होगी होगी कुछ भी एनीथिंग सोचते भी नहीं। मैं अभी भी कुछ भारत के कुछ गांवों के पार्ट में जाता हूं, कई बार गया हूं और देखता हूं, अभी भी लोग कंठी पहने से डरते हैं, पता है आपको किस लिए, कि प्रभु ये कंठी पहन के झूठ तो नहीं बोलूंगा ना, इसका मतलब एक्सपेक्ट करते हैं कि जो कंठी पहन रहा है उसको झूठ नहीं बोलना चाहिए, और हम क्या करते हैं, धरले से बोलते हैं, हम धर्म के आड़ में व्यापार चला रहे हैं, धर्म के आड़ में व्यापार चलाना है। सब झूठ भी सब भी धर्म के आड़ में बहुत अधर्मी अधार्मिक काम होते हैं, धर्म का सहारा लिया जाता है। ये दोगलापन है, डुप्लीसिटी है। जब तक ये नहीं छोड़ेंगे, हरि नाम प्रभावित फलीभूत नहीं होगा, फिर ये बहुत समय लगेगा। मैं अब शुरू से कह रहा हूं, आपका ऐसा नहीं कि हरि नाम व्यर्थ चला जाएगा, बट क्या बहुत लंबा समय लगेगा, कई जन्मों वाला होगा वो, कई जन्मों वाला। अगर प्रभुपाद कह रहे हैं कि कोई एक जन्म में जा सकते हैं, तो इसी बेस पे कह रहे हैं। यही है कि ये व्यक्ति वो सब ये सब चीजें अपने अंदर डेवलप करे, ब्राह्मणिकल कल्चर डेवलप करे, तो ये डिवाइन क्वालिटी आएगी और एक जन्म में धाम चला जाएगा। प्रभुपाद से पहले एक वैष्णव आचार्य आज तक कोई नहीं आया जिसने कहा हो कि कोई व्यक्ति एक जन्म में धाम जा सकता है। किसी ने नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा आज तक कि कोई व्यक्ति एक एक जन्म में धाम जा सकता है। प्रभुपाद ने कहा केवल एक जन्म में धाम जा सकता है व्यक्ति, प्रोवाइडेड ये सब करे। जैसे जब जनक महाराज के दरबार में जो है वो अष्टावक्र जाते हैं, तो जब अष्टावक्र से उनकी बड़ी सारी बातचीत होती है और वो देखते हैं कि अष्टावक्र इतने प्रभावशाली व्यक्ति हैं, अष्टावक्र का मतलब आठ जगह से टेढ़े थे वो, आप सोचिए कौन नहीं हंसेगा उसको देखकर, बरबस हंसी छूटेगी किसी की। अब हमारे बीच में कोई आठ ऐसा व्यक्ति आ जाए जो आठ जगह से टेढ़ा हो, हमारी हंसी नहीं छूटेगी, चाहे हम ना बोले बात अलग है, पर हम ये क्या क्रिएचर है भाई। तो जब वो जनक की राजसभा में जाते हैं तो वहां भी लोग हंसना शुरू कर दिया लोगों ने, तो उन्होंने क्या बोला उनको, चमार हैं ये सब। सारे ब्राह्मणों को जितने भी लोग बैठे थे, पूरे संसार के बड़े बड़े ब्राह्मण जो बैठे थे वहां पर, उनको क्या बोला अष्टावक्र ने, छोटा सा 12 साल का आठ जगह से टेढ़ा उस बच्चे ने क्या बोला, ये सब चमार है, सन्न रह गए, सारे सन्न रह गए। कैसे बोल दिया फिर, अब चूंकि जनक महाराज स्वयं दरबार में बैठे हैं, उन्होंने प्रश्न किया आपने ऐसे क्यों बोला, कहा महाराज चमड़ी को कौन पहचानता है, कौन पहचानता है, चमार, मेरी चमड़ी देखकर यहां से ना, तो ये चमार है ये सब। फिर कहा उसने, ये सब चमार है। और किसी ब्राह्मण की, किसी व्यक्ति की, किसी विद्वान की हिम्मत नहीं हुई कि अष्टावक्र के उस चीज को काट दे। कहा क्या नदी में जल, नदी के टेढ़े मेढ़े होने से पानी टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, क्या टेढ़े घड़े में पानी टेढ़ा होता है, क्या मेरे टेढ़े शरीर में जीवात्मा टेढ़ा है, तो फिर ये मुझे देख के क्यों हंसे। खैर ऑल टुगेदर वो एक डिफरेंट स्टोरी है। तो जो जनक अष्टावक्र के दरबार में जब जाते हैं, वो अष्टावक्र जब जाते हैं जनक के दरबार में, तो जनक पूछते हैं भगवान को मैं कितने देर में रियलाइज कर सकता हूं, उन्होंने क्या कहा, एक क्षण में महाराज जनक, केवल एक क्षण में, एक क्षण में। कहा हां एक क्षण भी, बल्कि उन्होंने बोला कि जितने देर में आप घोड़े पर बैठोगे इतने देर में आपको भगवान का को जो क्या वो जो है ब्रह्म का जो है वो रियलाइजेशन हो जाएगा। फिर उन्होंने क्या बोला, प्रोवाइडेड, परंतु शर्त ये है। तो प्रभुपाद ने क्या कहा कि कोई एक जन्म धाम जा सकता है, प्रोवाइडेड ये होने चाहिए आपके पास। हम सोचते हैं कि प्रभुपाद ने बोल दिया एक जन्म धाम चला जाएंगे, धाम करते रहो करते रहो, ये भी तो करो, आपका माला भी तो फलीभूत होना चाहिए जब ये सब चीजें करोगे साथ में। धार्मिक होने का ठीक है, हम नाम जप करते हैं, इसका मतलब ना बड़े बड़े हम काम करें, उच्छृंखलता करें, हमारे अंदर हम अजीबोगरीब चीजें करने लग जाते हैं, किसी देवता के मंदिर में जाते हैं, कहीं जाते हैं प्रणाम नहीं करते, प्रभु जी प्रणाम, प्रणाम तो करना है, वैष्णव तो चीटी का भी रिस्पेक्ट करता है, फिर देवताओं का रिस्पेक्ट क्यों नहीं करोगे आप। यह कि हम उनकी भक्ति नहीं करेंगे, हम जानबूझ के जाने का प्रयास नहीं करेंगे, आप कहीं जा रहे हो, कहीं पहुंच गए हो, हम प्रीचिंग मूवमेंट में कहीं जा रहे हो तो हम निश्चित रूप से प्रणाम करना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं, सॉरी टाइम हो गया मुझे लगता है कि, तो कहने का मतलब है कि इसीलिए हमारा जो ये नाम जप है ये प्रभावित नहीं होता। फिर इसमें एक चीज जो मैं थोड़ा सा दो मिनट और लूंगा, जो प्रभुपाद जी अपने परपट में लिखते हैं कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दो शब्द को यूज किया है, कि जो इंडिपेंडेंट है वो कौन है, कृष्ण है, और डिपेंडेंट कौन है, जीवात्मा है। आश्रित जो व्यक्ति है वो आश्रय के बिना नहीं रह सकता, और भगवान इंडिपेंडेंट कैसे हैं, कोई इंडिपेंडेंट कैसे होता है, उसको कुछ आवश्यकता नहीं है, उसको कोई नीड नहीं है और उसकी कोई डिजायर नहीं है, ना उसकी कोई आवश्यकता है ना उसकी कोई डिजायर है, ना उसको किसी से किसी चीज की अपेक्षा है। अपेक्षा रखने वाला व्यक्ति, चाहे वो हमारे कृष्णा कॉन्शियस में हो, चाहे डिबोटी हो, सीनियर डिबोटी हो, जूनियर डिबोटी हो, अपेक्षा रखने वाला व्यक्ति हमेशा भिखारी रहता है। वो भिखारी है जो किसी से किसी चीज की अपेक्षा रखता है। जो अपेक्षा नहीं रहता वो राजा है, अपने जगह का राजा है वो सच में, जो किसी से किसी चीज की अपेक्षा नहीं रखता। ही इज द रियल किंग, रियल किंग है वो। पर किसी को किसी चीज से अपेक्षा है तो इसका मतलब जो है वो निश्चित रूप से भिखमंगा है, भिखारी है। तो भगवान इंडिपेंडेंट क्यों है, उसको किसी से उनको किसी चीज की अपेक्षा नहीं है, उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है संसार में, उनको सृष्टि करने के लिए भी लक्ष्मी की आवश्यकता नहीं है, और किसी चीज की डिजायर भी नहीं है। भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं अर्जुन को, नमे पार्थास्तु कर्तव्यम त्रिसुलोकेषु किंचन नानवाप्तवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। मुझे संसार में किसी चीज की अपेक्षा नहीं है, न कोई इच्छा है, फिर भी मैं तुम्हारा रथ चला रहा हूं। वो भगवान के लिए क्या, क्यों, क्या जरूरत थी रथ चलाने की, कह रहा फिर भी मैं तुम्हारा रथ चला रहा हूं, क्यों? क्योंकि भक्त वत्सलता की वजह से कुछ भी करेंगे भक्त के लिए, रथ चला रहे हैं। और उनको पता है कि युद्ध में, जो युद्ध होता है बड़े बड़े युद्ध में सुनाई नहीं देता कई बार, तो जो साथ पीछे बैठा हुआ जो व्यक्ति है वो पैर से मारता है उसको, अगर लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट तरफ मारेगा पैर से उसको, यानी अर्थात मतलब लेफ्ट घुमा सरथ को, राइट जाना है तो राइट की तरफ पैर मारेगा, अर्थात राइट घुमा पैर सरथ को। और भगवान ने कृष्ण ने अर्जुन की रथ चलाई, ये भक्त वत्सलता है। तो वो इसीलिए वो इंडिपेंडेंट है उनको, और अपनी इच्छा से करी। और डिपेंडेंट कौन है, जिसकी डिजायर है, और जो डिजायर का मतलब वो सब कुछ के लिए आश्रित रहता है। अपने खाने के लिए आप पचा नहीं सकते, हम लोग सब कुछ के लिए भगवान पर आश्रित हैं। हम सांस भगवान की कृपा के बिना नहीं ले सकते, क्योंकि हवा भी उनकी है। ये शरीर में जिस कंटेंट से बना है वो कंटेंट्स भी भगवान ने प्रदान किए हैं। हम चल भी नहीं सकते भगवान की सेवा के बिना, ये हम हाथ ऐसे जम्भाई लेते हैं ये भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी भगवान की जो पांच वायु हैं, 10 वायु होते हैं पूरे शरीर के अंदर, जो पांच का तो आप सब लोग नाम जानते होंगे, 5 और वायु होती है इसके अंदर, जो उसको वो नाग कूर्म कर्कोटक ये सब जो वायु होते हैं ये इनको चलाते हैं। ये सब आप जम्भाई लेते हैं ये एक अलग वायु है, ये हाथ चलता है, ये मूव करता है, ये अलग वायु है, ये 10 वायु मिलकर के हमारे शरीर को चलाते हैं। भगवान वैश्वानर बन के हमारी भोजन को पचाते हैं। तो आश्रित जीव जो है वो बिना आश्रय के रह नहीं सकता। हम जीवात्मा को हमेशा यही समझना चाहिए कि मैं भगवान की कृपा के बिना तो 1 सेकंड भी जीवित नहीं रह सकता। ये सनलाइट करोड़ों साल से आ रहा है, कभी बिल नहीं भेजा इसने। एनडीपीएल राजधानी पावर लिमिटेड 4 घंटे 6 घंटे के लिए फटाफट आ जाता है। बिजली पानी की लड़ाई हो रही है ना दिल्ली में, बहुत बिल आ रहे हैं, ये इन्होंने करोड़ों साल से दिया है, कभी बिल भेजा आपको? ये भगवान की एनर्जी है, क्योंकि आश्रय तत्व के अंदर है। इसीलिए हम सबका आश्रित जो तत्व है उसको आश्रय तत्व के बिना रह नहीं सकता। हम सूर्य के प्रकाश के बिना जीवित नहीं रह सकते, हम हवा के बिना जीवित नहीं रह सकते। वही है कि ये सब चीजें बहुत जरूरी है। इसलिए महाप्रभु जो कह रहे हैं कि हम जो चैंटिंग करते हैं, हम जो भगवान का नाम लेते हैं, तो बेस्ट ये है कि साथ में जो प्यूरिफिकेशन के प्रोसेस हैं उन सबको अगर हम साथ में करेंगे तो हमारे नाम जो है वो जल्दी फलीभूत होगा और निश्चित रूप से हम अपने गोल को प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। क्षमा करिएगा 9:20 हो गया है, प्रश्नोत्तर के लिए समय नहीं है। किसी का कोई प्रश्न है तो मैं उसे पाल बात करूँ।